نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دورہ قرآن 2017 کے 16 دن کا آغاز کرتے ہیں ڈے 16 ہے کیسے دن گزر گئے ایسے بولتے ہوئے بھی کچھ ہو رہا ہے دل کو کیا واقعی ہم نے اس کا حق ادا کیا ہے اس سوچ کے ساتھ سوچئے کیونکہ جب چیز نصف سے آگے چلی جاتی ہے تو بہت جلدی گزرتی ہے یاد رکھیے یہ عمر ہی ہے جو آخری حصہ مشکل سے گزرتا ہے ادروائز آپ دیکھیں کہ جب کوئی چیز ایسے جاری ہوتی ہے مجھے رمضان ایسے لگتا ہے یوں سلو تو پہلے سے لے کے 15 اور 16 اور ہمارا یہ دورہ قرآن ہے بھی 32 دن کا تو 16 سمجھے پیک ہے اب اس کے بعد آپ یوں پھنس لیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس گزرتے وقت کا ہم بہترین حق ادا کر سکیں آج ہم سورت ابراہیم کے آغاز سے شروع کریں گے بہت ہی خوبصورت سورت ہے بہت پیاری ہستی کے نام پر جن کو ہم تقریباً ہر بارے میں یاد کرتے آ رہے ہیں اور ان پر رش کرتے آ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا بنا دے کہ چند سالوں کی زندگی جو بسر کر کے گئے اس کا کتنا پیارا بدلہ آج تک وہ پا رہے ہوں گے اس سورت کا جو مین مضمون ہے اگر آپ دیکھیں تو صبر اور شکر بار بار صبر اور شکر کا آپ کو اس میں ذکر ملے گا سورت کا آغاز ہی قرآن کے ساتھ ہے تو صبر اور شکر آتا ہی قرآن کے پڑھنے سے ہے آئیے تھوڑا سا اس کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الف لام را اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے کیا خوبصورت آغاز ہے ڈپریشن سے نکالنے والی آیات اندھیروں سے روشنیوں والی آیات یہ قرآن کی آیات نہ صرف یہ ہے کہ ہمیں الومینیٹ کرتی ہیں بلکہ انلائٹن بھی کرتی ہیں امیجینیشن میں لائیے کوئی ایک چیز جو روشنی کرتی ہے موبتی بھی ہو سکتی ہے بلب بھی ہو سکتا ہے ٹیوب بھی ہو سکتی ہے ظاہری طور پہ آپ روشنی میں بیٹھے ہوں لیکن آپ کا دل روشن ہے کہ نہیں آپ کو نہیں پتا یہ قرآن اصل میں انسان کو روشن خیال بناتا ہے ये तो आज हमारी नाफरमानियों की सजा पड़ी ना हम पे कि दीन वालों को हम बैकवर्ड और तंग मिजाज और घुटे हुए जहन के सोचते हैं। हकीकत ये कि जिसने कुरान को अपनी असल पे ले लिया वो सबसे ज्यादा रोशन ख्याल है। ये कुरान हमें घुटा हुआ नहीं बनाता, ये हमारे अंदर की घुटन दूर करता है, और इसको छोड़ने वाले तो फिर डिप्रेशन में चले ही जाते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे अंदर रोशनी डाल दे, और अंदर की रोशनी के लिए जरूरी है कि बंदा सब्र भी करे और शुक्र भी करे। इसके बरक्स फरमाया, और सख्त तबाहकुन सजा है कबूले हक से इनकार करने वालों के लिए, कौन है वो? अब देखिए यहाँ लफ्ज कुरान पाक में अगर आप देखें तो काफिर है, वैलुल लिल काफिरीन। जहाँ लफ्ज काफिर आता है हम क्या सोचते हैं अमूमन? डिसबिलीवर, बल्कि उससे भी बढ़ के काफिर, कुफारे मक्का। नहीं, अगली आयत में देखिए यहाँ कुफर से कौन सा कुफर मुराद है। अल्लज़ीना यस्तहिब्बुनल हयात अद-दुनिया अलल आखिरा, जो लोग दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं। पहली सिफत कुफर की, कुफर में डालने वाली पहली चीज हुब्बे दुनिया, और हुब्बे दुनिया भी कैसी जो आखिरत को भुलाकर दुनिया में मगन कर दे। दूसरी बात, जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोक रहे हैं। कैसे रोकते हैं? खुद भी रुके हुए दूसरों को भी रोकते हैं, खुद भी दुनिया कमा रहे हैं दूसरों को भी इसके कमाने की दावत देते हैं, खुद भी इस दुनिया को इतना अट्रैक्टिव करके देखते हैं और दूसरों को भी दिखाते हैं, और चाहते हैं कि ये रास्ता इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक टेढ़ा हो जाए। ये लोग बहुत गुमराही में दूर निकल गए। थोड़ा सा इस पे मुहासबा कीजिए, मैं किसे तरजीह दिए हुए हूँ? मेरी जिंदगी का किबला क्या है? मेरी प्रायोरिटीज क्या हैं? कैसे पता चलता है ये? खुशियों और गमों से, मसरूफियात से, उठने बैठने से, इरादों से। हर वो चीज़ जो आपके इरादों पे छाई हुई है, जो आपके गमों पे छाई हुई है, जो आपकी खुशियों पे छाई हुई है, आप उसी की तरफ है। अगर तो हर वक्त दुनिया दुनिया दुनिया, खुशियाँ गम इरादे दुनिया, तो पहली बात है। और अगर ये सब होते हुए सबसे बड़ी चीज़ आखरत है, तो फिर अल्लाह ताला से इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है। हमने अपना पैगाम देने के लिए जब भी किसी रसूल को भेजा, उसने अपनी ही कौम की जुबान में पैगाम दिया ताकि वो इन्हें अच्छी तरह खोल खोल कर बात समझाए। फिर अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है, और जिसे चाहता है हिदायत बख्शता है, और वो बाला और दस्त और हकीम है। या फिर एक मुहासबे का नुक्ता, रसूल तो आए और अपनी जुबान में बोल गए, जैसे आप देखिए कि तौरात थी, गुमान है कि ये हिब्रो जुबान में नाजिल हुई, हालांकि अब श्योर नहीं है। वो किताबें ऐसी मिटी कि उनके नाम तक मिट गए, तर्जमे तो हर जुबान में मौजूद हैं, असल में किस में आई थी नहीं पता। कुरान कहाँ नाजिल हुआ? अरब में, अरबी में नाजिल हुआ। अगर नबी सल्लम फ्रांस में होते, बिलफर्ज हो सकता था, तो कुरान फ्रेंच में नाजिल होता। फ्रेंच को भी अल्लाह उतनी वसतें दे देता जितनी अरबी को दी हैं। लेकिन मेरा अपना आपसे और आपका आपसे क्वेश्चन ये है, क्या मैंने इसको अपनी जुबान में समझ लिया? दिल के अंदर डूब कर इसके बारे में सोचे, क्या ये किताबे हिदायत मुझे बगैर किसी तर्जुमे के अपनी जुबान में समझ आती है? जैसे इस वक्त आप मेरे ये जुमले सुन रहे हैं, जैसे बच्चा माँ की सुनता है, जैसे गूंगी माँ के इशारे बच्चा समझता है, जैसे गूंगे बच्चे के इशारे माँ समझती है, क्या मैं इस कुरान को समझती हूँ? और अगर जवाब नहीं है तो तड़प के दुआ करें, तड़प के दुआ करें कि अल्लाह मुझे इस महरूमी में ना मारना, मैंने नहीं मरना। अगले साल के रमजान के दौरे कुरान से पहले ये कुरान मुझे अरबी में समझ आ रहा हूँ, अगली तरावियों में दाखिल होने से पहले मैं इसको समझ सकूं, और अगर है अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक तो बेहतरी लाइए, और अगर है बहुत अच्छा समझ आता है तो इस नेमत का दवाम मांगिए, क्योंकि इससे बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं हो सकती। सूरह यूनुस 58 में पढ़ चुके हैं, फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन। तो अब जिंदगी का कुछ वक्त, कुछ हिस्सा इस किताबे हिदायत को सीखने के लिए लगाइए। ये है जिंदगी का एसेंस, जैसे फूलों का एसेंस खुशबू की सूरत में मिलता है ना। आपकी मेरी जिंदगी, जब हम डेथ बेड पे होंगे ना, मैं पूरी यकीन से अपने बारे में तो अभी भी कह सकती हूँ, लेकिन आप मेरी बात पे यकीन कर लें, डेथ बेड पे अगर कोई आपसे पूछेगा ना कि बताओ सुनाओ इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या मिली, तो आप कहेंगे ये कुरान मुझे अपनी जुबान में समझ आता था। पूरे यकीन से कह रही, कोई मुबालगा नहीं है, एक सेकंड भी मेरे दिल पे इस पे बोझ नहीं है कि मैंने कोई सांप का लाख का जोड़ा है या मैंने कोई बहुत बात घुमा के कि, सीधी सी बात है, एक पलड़े में इस वक्त भी मुझे कोई कहे कि सर से पांव तक जिंदगी के इतने सालों में जो नेमतें तुम्हें अल्लाह ने दी हैं, और अल्लाह जानता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा नेमतें उसने मुझे ही दी हैं, और एक पलड़े में वो रखूं और दूसरे पलड़े में सिर्फ कुरान की ये दौलत। मैं कोई बड़ी बातों की बात नहीं कर रही इस वक्त, ना तफसीर की बात कर रही हूं, ना फिकी बातों की बात, कुछ नहीं बोल रही। कोई एक हदीस भी मुझे ना आए, पर ये कुरान का तर्जमा जो मुझे सिर्फ अरबी देख के समझ आता है, ये पलड़ा मुझे झुकता हुआ दिखता, क्योंकि ये मेरे मालिक की बात है। आई कैन अंडरस्टैंड हिम। तो जब मैं अपने मालिक की बात समझ रही हूँ, तो मैं मानने की कोशिश भी तो करूंगी। आज हमारी उम्मत का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि उनको कुरान भी समझने के लिए दूसरों से पूछना पड़ता है। बताइए, जिस माँ को अपने बच्चे की बात सुनने के लिए किसी दूसरे की मदद चाहिए, क्या रेपो बनेगा माँ बच्चे में? शौहर बीवी के बीच में एक इंटरप्रेटर आ जाए तो क्या मोहब्बत का इजहार होगा? तो बस यहीं से समझे, कोई रिश्ता अपने जज्बों का इजहार कर ही नहीं पाता जब तक डायरेक्ट ताल्लुक ना हो। अल्लाह से दुआ कीजिए हमें महरूम लोगों में ना रखे। हम इससे पहले मूसा को भी अपनी निशानियों के साथ भेज चुके हैं, इसे भी हमने हुक्म दिया था कि अपनी कौम को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाओ। सोचिए आप, हर किताब लोगों को अंधेरों से निकालने आती है। ये अलग बात है कि लोग उसी किताब को सिर्फ अपने चंद मकासिद के लिए पढ़ने लग जाते हैं और फिर अंधेरों में खो जाते हैं। और इन्हें तारीख इलाही के सबक आमोज वाकयात सुनाकर नसीहत करो। इन वाकयात में बड़ी नसीहत है हर उस शख्स के लिए जो सब्र और शुक्र करने वाला हो। ए अल्लाह, हमें साबिर और शाकिर बना दे। याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह के उस एहसान को याद करो जो इसने तुम पर किया है। इसने तुमको फिरौन वालों से छुड़ाया जो तुमको सख्त तकलीफें देते थे, तुम्हारे लड़कों को कत्ल कर डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा बचा रखते थे। इसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। आजमाइश बजाहर किसकी तरफ से थी? फिरौन की। पीछे हाथ किसका था? अल्लाह का। और अल्लाह का हाथ क्यों था? गुनाहों की शामत थी। तो याद रखिए, आमालुकुम ओ मालुकुम, तुम्हारे आमाल तुम्हारे हुक्मरान बन जाते हैं। आप और मैं चाहते हैं अगर हमें अच्छे हुक्मरान मिले तो हमें अमल अच्छे करने पड़ेंगे। और याद करो, तुम्हारे रब ने खबरदार कर दिया, वइस्तअज़ना रब्बुकुम लाइन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम वलाइन कफर तुम इन अज़ाबी लशदीद। क्या खबरदार कर दिया कि अगर शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुमको और नवाजूंगा, और अगर कुफराने नेमत करोगे तो मेरी सजा बहुत सख्त है। यहां पर रुकिए, हकीकत यह है कि शुक्र वाली आंख हो ना तो गम भी खूबसूरत लगते हैं, और नशुक्री वाली आंख होती है ना तो खुशियों में भी कीड़े ही डलते हैं। दुनिया की नेमतें आपके मेरे लिए अल्लाह का एक इनाम है, एनर्जी ड्रिंक है। आप अपनी इन दुनिया की नेमतों से अपनी आंखों को ठंडी करें और दीन के लिए फ्रेशअप हों और काम करें। ये है मेरी नजर में शुक्र की तारीफ। अल्लाह की दी हुई नेमतें अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करें और इस दुनिया में भी खुशियां पाएं और आखिरत में भी। और शुक्रगुजार कौन होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड वाला। आधा ग्लास खाली कि आधा ग्लास भरा हुआ? भरा हुआ कौन सा है? आपको आधा ग्लास को दिखाए भरा पानी वाला, कुछ कहेंगे आधा खाली है, कुछ कहेंगे आधा भरा हुआ है। आपका मेरा काम क्या है? शुक्र है ग्लास आधा है पानी का, ज्यादा होता तो मेरे ऊपर ही गिर पड़ता। शुक्र है चाय का कप बहुत नहीं भरा हुआ, ज्यादा होता तो हो सकता है पीते हुए चंद कतरे गिर जाते। और यकीन कीजिए, जिसने शुक्र सीख लिया उसने जीना सीख लिया। अगली तो पूरी सूरत ही आपको मुझे नेमतों की शुक्रगुजारी दिखे। सूरत नाहल पूरी नेमतों की सूरत है, अगले पारे में हम पढ़ेंगे। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें शुक्रगुजार बना दे। अल्लाह की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल किया तो शुक्र है, और इसके बरक्स अगर कुफरान ने नेमत करोगे तो मेरी सजा बड़ी सख्त है, तो फिर नाशुक्री क्या हुई? अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करना अल्लाह ही को नाराज करने के लिए, अल्लाह ही की दी हुई खुशियों को इस्तेमाल करना अल्लाह ही की नाफरमानी करने के लिए। तो यहां फिर थोड़ा सा गौर व फिक्र, मैं शुक्रगुजार हूं या मैं ना शुक्रिया हूं? और ये जो सजा की बात हुई है ना, लइन कफर तुम्हें ना अज़ाब इला शदीद, ये आखरत में नहीं आती, ये दुनिया में ही आ जाती है। अल्लाह हमें नाशुक्रियों की सजा से बचा ले। और मूसा ने कहा, अगर तुम कुफर करो और जमीन के सारे रहने वाले भी काफिर हो जाएं तो अल्लाह बेनियाज और अपनी जात में आप महमूद हैं। वो तुम्हारे वोटों से इलेक्ट नहीं हुआ ना उस बिल्ला कि तुमने अगर थोड़ा सा शुक्र कम कर दिया तो उसको खतरा होगा, उसको कोई परवाह नहीं। देखिए यहाँ एक छोटा सा जुमला जो हम आमतौर पर बहुत बोलते हैं, उसकी इसलाह चाहूंगी। पूछा जाता है अल्लाह की इबादत करो, क्यों करो? क्योंकि उसने मुझे पैदा किया। बचपन से ये जुमला सुनते हैं, मैं अल्लाह की इबादत क्यों करूं? क्योंकि उसने मुझे पैदा किया। गलत है। गोया के अगर अल्लाह मुझे पैदा ना करता तो फिर तो उसकी इबादत की जरूरत ही नहीं थी। तो गोया के मैं बहुत बड़ी चीज हूं कि जिसको अल्लाह ने पैदा कर दिया तो अब अल्लाह का शुक्र अदा करूं। अगर अल्लाह मुझे पैदा ना भी करता, अल्लाह कुछ भी पैदा ना करता, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिसको समझ आ गई है वो समझ गया। अल्लाह कुछ करे, अल्लाह कुछ ना करे, अल्लाह कुछ दे, अल्लाह कुछ ना दे, अल्लाह कुछ दे के ले ले, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह ही अला कुल्ली हाल। ये सोच है कुरान की। आपको इस सोच के हामिलीन कितने को दिखते हैं दुनिया में चलते फिरते? शुक्र से ज्यादा शिकवे और अल्लाह ताला की तारीफों से ज्यादा शिकायतें। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को शुक्रगुजार बना दे। क्या तुम्हें इन कौमों के हालात नहीं पहुंचे जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं, कौम नूह, आद, समूद और इनके बाद आने वाली कौमें, जिनका शुमार अल्लाह ही को मालूम है। इनके रसूल जब इनके पास साफ साफ बातें और खुली खुली निशानियां लिए हुए आए तो उन्होंने अपने मुंह में हाथ दबा लिए और कहा, जिस पैगाम के साथ तुम भेजे गए हो हम तो उसका इनकार करते हैं, हम तो इसको नहीं मानते, और जिस चीज की तुम हमें दावत देते हो इसकी तरफ से हम सख्त खिलजान आमेज। खिलजान कहते हैं शक डालने वाला, बेचैन करने वाला। खिलजान आमेज शक में पड़े हुए हैं। इनके रसूलों ने कहा, क्या खुदा के बारे में शक है जो आसमान और जमीन का खालिक है? वो तुम्हें बुला रहा है ताकि तुम्हारे कसूर माफ करे और तुमको एक मुद्दते मुकर्रर तक मोहलत दे। उन्होंने जवाब दिया, तुम कुछ नहीं हो मगर वैसे ही इंसान जैसे हम हैं। तुम हमें इन हस्तियों की बंदगी से रोकना चाहते हो जिनकी बंदगी बाप दादा से होती चली आई? अच्छा तो लाओ कोई सरीख सनद। इनके रसूलों ने इनसे कहा, वाकई हम कुछ नहीं है मगर तुम ही जैसे इंसान, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहता है नवाजता है, और ये हमारे इख्तियार में नहीं कि तुम्हें कोई सनद ला दें। सनत तो अल्लाह ही की इज़्ज़त से आ सकती है, और अल्लाह ही पर अहले ईमान को भरोसा करना चाहिए। और हम क्यों न अल्लाह पर भरोसा करें जबकि हमारी जिंदगी की राहों में इसने हमारी रहनुमाई की? जो अज़ियतें तुम लोग हमें दे रहे हो इन पर हम सब्र करेंगे, और भरोसा करने वालों का भरोसा सिर्फ अल्लाह ही पर होना चाहिए। या आप देखिए, शुक्र की बात हुई ना, तो इन कौमों के नाम लेकर बता दिया, नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत इनको मिली, वक्त का रसूल इनके पास पहुंच गया जो हिदायत का पैगाम लेकर आया। लेकिन लोगों ने क्या किया? तो याद रखिए, शायद दुनिया की दूसरी नेमतों की कदर तो हम करते ही होंगे। दूध को देखकर भी खुश होते हैं तो पूत को देखकर भी खुश होते हैं, घर को और गाड़ी को देखकर भी शुक्र करते हैं, लेकिन एक नेमत जिसको बाज दफा नेमत भी नहीं समझते बल्कि अपने ऊपर एक लाइबिलिटी और एक तावान और एक खराज समझ लेते हैं, और वो है हिदायत की नेमत। बहुत मुश्किल, रोज जाना पड़ेगा, रोज जाना पड़ेगा, रोजे से जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, 2.5 घंटे बैठना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं जरा गौर तो करो। देखिए मक्का वालों का क्या मसला था, 13 साल तक अल्लाह ने रसूल और हिदायत की नेमत उनके हाथ में रखी, कितनों ने फैज लिया? 100 कुछ। हिजरत मदीना के वक्त सिर्फ 100 कुछ सहाबा थे, बाकी सारा शहर कुफर से भरा पड़ा है। अल्लाह हम सबको नाशुक्रियों से बचाए। आखिरकार मुनकरीन ने अपने रसूलों से कह दिया कि या तो तुम्हें हमारी मिल्लत में वापस आना होगा। ये नोट कीजिए जुमला, जो लोग खुद शुक्र नहीं करते ना, वो शुक्र करने वालों को टिकने नहीं देते। वो कहते हैं तुम भी पलटो। क्यों? ताकि फिर हम दो तो हो जाएं, फिर मेरे जैसा कोई तो हो। उनको क्या, बस आप देखिए कि अगर आपने गीबत छोड़ दी तो आपकी दोस्तें क्या चाहेंगी? नहीं, वजह क्या है कि आपके सामने फिर गीबत करना मुश्किल लगेगा। अरे छोड़ो, अल्लाह माफ करेगा। आपने जरा सा अपने हाल उलिये को बेहतर करना चाहा, दुपट्टे खींचेंगी आपके। नहीं, वजह गिल्ट है कि अगर ये करने लग गई तो कल ये हम पे भी तनकीद करेंगी और हमें बुरा लगेगा। बस आप देखिए कि किसी महफिल में लोग बैठे हैं और मगरिब की अजान होती है, सारे ही बैठे हुए, सब खुश हैं, उसमें एक एक दो दो लोग उठे और वहीं सामने नमाज पढ़ने लग जाए, बाकियों को क्या लगेगा क्यों पढ़ी इन्होंने नमाज? अब पढ़ नहीं सकते, वजू करना पड़ेगा, सारा हालुलिया खराब होगा, और ना पढ़ी तो देखो सब कहेंगे ये मुसलमान नहीं है। ये है, निकलो हमारी तरफ। याद रखिएगा, एक ईंट गिरती है ना तो अकेली नहीं गिरती। आप तस्वर में लाइए इस दीवार के अंदर ईंटें, आप सिर्फ एक ईंट निकाल दें, चार ईंटें उसके इर्द गिर्द की वो भी हिल जाती हैं। तो अल्लाह ताला हमें ना शुक्रियों से बचाए। जो आता है वो अपने साथ चार को लेकर आता है, जो नहीं आता वो अपने साथ चार को रोकता है। मुंह से नहीं रोकता, अमल से रोकता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें नहीं इसकी जरूरत तो हमें भी इसकी जरूरत नहीं है, वरना क्या होगा? धमकी देखिए, वरना हम तुम्हें अपने मुल्क से निकाल देंगे। तब इनके रब ने इन पर वही भेजी कि हम इन जालिमों को हलाक करेंगे। नबियों को किस चीज की धमकी मिली है? डेपोटेशन, हम तुम्हें डिपोर्ट करवा देंगे। सच बताइए कि आज मुसलमानों के ऊपर इतनी सख्ती है किसी दुनिया के मुल्क में कि हम तुम्हें यहां से निकाल बाहर फेंकेंगे? और कई लोगों ने ये बात कबूल कर ली चाहते या अनजाने में कि ला तऊदुन नफी मिल्लतिन, वो कहते ना 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 ना, हम तुम्हारे ही खुश हैं, जो मर्जी कर लो, जो कहते हो तुम्हें इस्लाम का हम छोड़ने को तैयार है, हमें यहां से ना निकालना। नबियों को कितनी बड़ी धमकी दी कि देखो हम तुम्हें निकाल देंगे। अल्लाह ताला कहते हैं अच्छा, ये तुम मेरे नबी को ये बात कहते हो? सोचो, हम तो जालिमों को हलाक करेंगे और इसके बाद तुम्हें जमीन में आबाद करेंगे, क्योंकि अलाकिबतु लिल मुत्तकीन। याद रखिए, हक को आँच नहीं, सच को आँच नहीं है। हक पे रहिए, डंके की चोट पे रहिए, वो है वो हस्ती। शर्त ये है कि आप उसके बंदे बन के जिए। ये इनाम है इसका जो मेरे हजूर जवाबदही का खौफ रखता हो। दुआ करते हैं अल्लाह हमें अपना खौफ दे दे। हम दुनिया वालों के सामने कितना डरते हैं, छोटी सी जवाबदही होती है, जान निकलती है। साल के बाद इनकम टैक्स की रिटर्न्स जाती हैं, सारे साल का हिसाब पहले ही उनके पास है, क्यों जान पे पड़ी होती है? पता नहीं क्या हो जाएगा। सारे महीने का हिसाब शौहर को देना पड़े, जान पे पड़ जाती है, कहाँ से पैसे आए, किधर गए, किधर लिए। किसी को कोई काम दे दें, वो जिम्मेदारी दे दे, कोई रिपोर्ट मांग ले, कोई उसकी खबर मांग ले, जान पे बन जाती, हाय हाय कैसे रिपोर्टिंग करें? अल्लाह के सामने रिपोर्टिंग क्या होगी? इस पे 3 सेकंड जरूर गौर कीजिए कि मेरी जिंदगी का वो दिन कैसा खौफनाक दिन होगा जब मैंने अपने रब को जवाब देना है। और किस बात का जवाब? सुम्मा लतुस्सलुन्न यौम इज़्ज़न नईम, उस दिन तुमसे जरूर नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। उन्होंने फैसला चाहा तो यूं इनका फैसला हुआ, और हर जब बार दुश्मन हक ने मुंह की खाई। फिर इसके बाद आगे इसके लिए जहन्नुम है, वहां इसे कच लहू का सा पानी पीने को दिया जाएगा, यानी ऐसी पस जिसमें खून भी हो, जिसे वो जबरदस्ती हलक से उतारने की कोशिश करेगा और मुश्किल ही से उतार सकेगा। मौत हर तरफ से इस पर छा रही होगी, मगर वो मरने ना पाएगा, और आगे एक सख्त अजाब इसकी जान का लागू रहेगा। मंजर को जहन में लाइए, तिलावत सुनते हैं आयतों की, और साथ ही साथ दुआ करें, अल्लाहुम्म ला तजअलना मिन्हुम।
قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ.
الله تعالى سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے.